भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो समस्त वैष्णव प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि हम बलराम जी के ऊपर कुछ बोले कि रोज का श्लोक करना है, कैसे करना है। तो राजेश कृष्ण प्रभु की भी सहमति है और ठीक है, लेकिन कौन सा श्लोक करना वो तैयारी नहीं किया था मैंने ऐसे ही। लेकिन बलराम जयंती के दिन चैतन्य चरित अमृत से पढ़ेंगे ना, कोई सुबह यहाँ सुबह क्लास में पढ़ेंगे ना, ऐसे ओम ज्ञानतिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादा कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामीति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और आज बोलना चाहिए हरे राम, क्यों? बलराम जी तो राम क्यों, बलराम क्यों नहीं?
राम और बलराम जी
वैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे लिए तीन राम है। कौन से तीन राम?
परशुराम,
परशुराम,
बलराम,
बलराम,
नित्यानंद राम।
नित्यानंद राम बाद में, और अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन राम। तो ये तीन राम वैदिक सभ्यता में है। तो नित्यानंद को राम क्यों बोलते हैं? बलराम ही है। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण के विस्तार नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण है। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रत्यक्ष बलराम है, इसलिए उनको भी राम कहते हैं। परंतु साधारणतः राम शब्द का संबोधन अयोध्यावासी दशरथ नंदन जानकी वल्लभ श्री राम को करते हैं साधारणतः। परंतु परशुराम जी को भी राम, वैसे भागवत में उनका नाम राम ही है, परंतु फिर राम को परशुराम क्यों कहते हैं? परशु धारण किया था शस्त्र, इसलिए उनका नाम हो गया परशु राम और बलराम। श्रीमद् भागवत में बलराम को राम अनेक बार कहा गया है। आप कोई श्लोक बता सकते हैं जिसमें बलराम का राम को राम कहा गया है? बहुत अच्छा, सुंदर श्लोक। इसको और जोर से बोलिए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे।
कृतवान किल कर्माणि,
कृतवान किल कर्माणि,
सह रामेण केशव,
सह रामेण केशव,
अतिमर्त्यानि भगवान,
अतिमर्त्यानि भगवान,
मूढ कपट मानुष,
मूढ कपट मानुष।
तो राम और केशव कपट है, कपटी है ना, यही बात है ना, तात्पर्य है। अच्छा, शब्द भेद करके इसका अर्थ समझाओ। बहुत सुंदर श्लोक चुना।
नहीं शरण में कुछ नहीं पूछ रहे हैं सुंदर कि राम और केशव कृष्ण ने कृतवान क्या किया, कृतवान किल कर्माणि, कौन कौन से कर्म उन्होंने किए, लीलाएं किए राम और कृष्ण साथ में मिलकर। अतिमर्त्यानि
रामेण सह केशव, रामेण किल कृतवान, कौन से कर्म किए उन्होंने, कौन से कार्य किए, किन्होंने, रामेण राम के द्वारा कौन से काम किए गए, और सह केशव, केशव के साथ। तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि रामेण राम के द्वारा केशव के साथ कौन से कार्य किए गए? आगे अति मर्त्यानि भगवान। हाँ, क्या मतलब इसका, मूढ़ कपट मानुष, अति मर्त्यानि भगवान।
मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं काम कार्य कर सकते हैं, ऐसे कार्य कौन कौन से उन्होंने किए जो स्वयं भगवान और मूढ़ कपट मानुष जो मनुष्य के रूप में लोगों को नहीं पता चले, वैसे मनुष्य का रूप उन्होंने लेकर
गूढ़ कपट मानुष। तो इन शब्दों का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसे बर्ताव किया, ऐसे उनका रहन सहन बोल चाल आदि था, दिखने में भी उनका रूप उनकी आकृति इस प्रकार से थी कि लोगों को लगा मानुष है, ये मनुष्य है, हमारे जैसे ही है। इसलिए उन्होंने कपट कर दिया। कपट किस तरह का, सबको धोखे में डाल दिया। किस तरह का धोखा, सबने क्या सोचा, कृष्ण बलराम मनुष्य है और ये बात बहुत गूढ़ है, रहस्यमय है। तो धोखा दो प्रकार से दिया, दो प्रकार के लोगों को अलग अलग धोखे दिए इस बारे में। एक शुद्ध भक्तों को धोखा दिया, दूसरा अभक्तों को धोखा दिया। शुद्ध भक्तों को धोखा कैसे दिया, व्रजवासी शुद्ध भक्त है ना, तो उन्होंने क्या सोचा कृष्ण और बलराम के बारे में, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रेमी है इत्यादि। ऐसे ही कभी कभी जानते थे इनकी दिव्यता को, परंतु फिर से माधुर्य रस के कारण, माधुर्य प्रेम के कारण फिर से, और ये तो हमारा मित्र है, बच्चा है। और जो अभक्त हैं, हाँ नहीं, जो अभक्त हैं उनको इसलिए, उन्होंने भी सोचा कि ये मनुष्य है, परंतु उनसे घृणा करते थे, या तो फिर उनको साधारण मनुष्य समझते थे। तो इस प्रकार से गूढ़ कपट मानुष अति मर्त्यानि भगवान। मर्त्य कौन होते हैं,
मनुष्य,
क्यों
मृत्यु होता है,
इस मृत्यु लोक को मर्त्य लोक भी कहते हैं। जो यहाँ मृत्यु लोक में रहते हैं मर्त्य लोक में उनको मर्त्य भी कहते हैं। तो उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिखाए, परंतु मनुष्य देह में रह के सबको धोखा दे दिया। अपने योग माया शक्ति से सब लोग सोचने लगे ये तो साधारण मनुष्य हैं। तो फिर से श्लोक बताओ।
कृतवान किल कर्माणि,
कृतवान किल कर्माणि,
सह रामेण केशव,
सह रामेण केशव,
अति मर्त्यानि भगवान,
गूढ कपट मानुषः।
तो ये एक श्लोक में रामेण सह रामेण केशव, तो यहाँ राम शब्द का तात्पर्य बलराम को संबोधित करता है। और कौन सा श्लोक आप बोल सकते हैं भागवतम में जिसमें बलराम जी को राम कहा गया है? खेड़े बोलो। और कौन से नाम दिए गए हैं बलराम को भागवतम में? भागवतम में तो नहीं, हलदर है, संकर्षण और
बलदेव।
दाऊ जी भागवतम में नहीं, बलभद्र, बल, ये सब नाम है भागवतम में। तो राम और बलराम, और कौन सा श्लोक? गोवर्धन की स्तुति में सबसे एक प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है भागवत का?
हरिदास वंश।
हाँ, कौन सा है? हरिदास वर्य वाला श्लोक बोलो। हंताय मद्रिर अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। फिर मानं तनोति सह गोकणयोस्तयोर्य पानीय सूर्य वसकंदर कंद मूलई। सुना है ना ये श्लोक? तो कौन इसका अर्थ समझाएंगे? कौन बात कर रहे हैं? गोपियां आपस में बात कर रही है। हंत, हंत मतलब ओ हो ऐसा। हंत अयम, हंताय अद्रि, अयम अद्रि, अद्रि अर्थात पर्वत, अयम मतलब ये। अरे हाय हाय, देखो ये, अरे ओहो हो ये पर्वत। हंताय अद्रि अबला, अबला मतलब अपने सखी को बोल रही है। एक गोपी दूसरी गोपी को अबला कहती है। हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्यः, अयम अद्रि हरिदास वर्यः, ये पर्वत जो है ये हरिदास वर्य है। वर्य अर्थात सबसे श्रेष्ठ, हरिदासों में से ये सबसे श्रेष्ठ है। और कौन दो है जिनको हरिदास कहा गया है भागवतम में? उद्धव और युधिष्ठिर महाराज, और तीसरे है गोवर्धन। तो ये अयम अद्रि, ये जो अद्रि है पर्वत, ये हरिदास वर्य यत, जिनके पर राम कृष्ण, राम कृष्ण मतलब वो बंगाल वाले नहीं हाँ तथा कर परमहंस वो नहीं, ये राम कृष्ण कौन है? बलराम और कृष्ण। ये राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, यत मतलब जिनको, अयम अद्रि ये पर्वत है, न केवल हरिदास वर्य है लेकिन देखो राम और कृष्ण इनके चरणों के स्पर्श के कारण प्रमोदः, मोद अर्थात आनंद, प्रमोद अर्थात प्रकृष्ट रूपेण आनंद, बहुत अधिक आनंद। हाँ, लोगों को नाम आजकल दिए जाते हैं प्रमोद, हो सकता है वो प्रमोद ना हो। किसी का नाम अमर है लेकिन वो तो अमर है ही नहीं, है ना। किसी का नाम सुशील हो सकता है वो सुशील ना हो, नाम है। परंतु गोवर्धन वास्तव में प्रमोद हो गए, मुदित हो गए। क्यों हो गए? राम कृष्ण, यहाँ राम कौन है? अयोध्यावासी राम,
बलराम,
और कौन? कृष्ण। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, उनके चरण कमलों के स्पर्श के कारण गोवर्धन को प्रमोद का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। और फिर उन्होंने सम्मान दिया राम कृष्ण और उनके गायों को, कैसे? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत, गो गणयोस, उनके जो गाय हैं, बछड़े हैं, उनको सम्मान किया, उनकी सेवा की, कैसे? पानीय सूयवस कंदर कंद मूलय ही, उनकी जितने भी आवश्यकताएं हैं सब उनकी पूरी कर दी, गायों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को, जब घूम रहे होते हैं पीने के लिए बहुत शीतल मीठा जल प्रदान किया झरनों में इत्यादि। गोवर्धन के ऊपर उन्होंने तरह तरह के स्वादिष्ट कंद मूल फल आदि पेड़ों पे दिए गोवर्धन में, ताकि बच्चे लोग, ग्वाल बाल लोग भी सब खा सकें। सूयवस, और वो जो स्वादिष्ट मीठा मीठा घास गायों को चरने के लिए दिया गोवर्धन के ऊपर, और बहुत सारे गुफे थे जिसके अंदर जाके फिर आराम कर सकते थे इत्यादि। इस तरह से गोवर्धन ने श्री कृष्ण, श्री बलराम, उनके ग्वाल बाल साथी और उनके जितने भी गाय बछड़े आदि हैं उन सब की सेवा इस प्रकार से की। तो ऐसे गोवर्धन की की प्रशंसा करते हैं, गोपियाँ करती हैं, ठीक है। तो ये भी एक उदाहरण है जहाँ पे बलराम को राम कहा गया है। ऐसे और बहुत है। तो इस प्रकार से बलराम जी का भी एक नाम राम है। तो कौन कौन राम है बताइए? चार राम की, रामों की बात की हमने, परशुराम, बलराम, अयोध्यावासी राम, नित्यानंद राम, और एक राम है, कौन? कृष्ण। क्यों कृष्ण को राम क्यों बता दिया? ऐसे सब मिक्स करके सबको ये कर देते हो, राम कौन है? ये है अयोध्यावासी है कि कृष्ण भी राम, कैसे हो गए?
राम ये शब्द आनंद को संबोधित करता है और आनंद के स्रोत ही कृष्ण।
बहुत अच्छा श्लोक, कौन सा श्लोक? यही जो बात बोली वो कौन सा श्लोक है? इसलिए कोई बताइए। रमंते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। क्या अर्थ है इसका? कौन बोलेंगे? रमंते, रमण करते हैं, ये बहुवचन में है। कौन लोग रमण करते हैं? योगिनः। तो जो योगी जन हैं वो रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, इसमें अनंते, वो अनंत में रमण करते हैं। वो अनंत क्या है जिनमें कि वो रमण करते हैं, सत्यानंदे, सत्य आनंद में रमण करते हैं, सत्यानंदे मतलब सत्य आनंद में, अनंते मतलब अनंत में, तो अनंत में सत्य सच्चे आनंद में, सत्यानंदे चिदात्मनि, तो ये सच्चे आनंद जो अनंत है उसका लक्षण क्या है, चिदात्मनि, ये चिन्मय है, आध्यात्मिक है। इति राम पदे नासो, इसलिए ये राम शब्द जो है ये किसका संबोधन करता है, परम ब्रह्म अभिधीयते। तो भगवान को राम क्यों बोलते हैं इस श्लोक के अनुसार, क्योंकि योगी जन उनमें रमण करते हैं। रमण, रम, रमण करना मतलब क्या, आनंद लेना। तो ये रमण शब्द जो है ये रम धातु से आता है, रम, रम से आया रमण, रम से आया राम। तो भगवान का नाम राम इसलिए है कि योगी जन जो कि भौतिक संसार के किसी भी तथाकथित आनंद में लगते नहीं हैं, ऐसे योगी जन जो आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं वो केवल भगवान में रमण करते हैं। और क्योंकि भगवान रमण के विषय हैं योगी जनों के लिए, इसलिए ऐसे भगवान को राम कहते हैं। तो परम सत्य परम भगवान कौन है,
कृष्ण है,
इसलिए कृष्ण भी राम है, बल्कि मूल राम तो कृष्ण ही है। ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि इतने भी अवतार हैं राम इत्यादि वो कृष्ण गोविंद से आते हैं,
रामादि मूर्ति सकलेन
कला,
रामादि मूर्ति सकलेन
कला नियमेन तिष्ठति,
हां
नानाव तारक रो भूमिषु किंतु
कृष्ण स्वयं समभवत् परमात्मानियो गोविंद मादि पुरुषं तमहं।
तो हम सब लोग ब्रह्म संहिता के श्लोक को कहेंगे,
रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोतु वनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमात्मान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
रामादि मूर्तिषु, राम आदि मतलब राम, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन इत्यादि, कला नियमेन तिष्ठन्, कला वो गोविंद भगवान के अंश हैं। नानावतारम करो भुवनेशु, तो वही गोविंद भगवान श्री कृष्ण नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, जैसे कि राम, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, और इनके जो मूल है वो कृष्ण है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि अयोध्या वासी राम हो, यहाँ तक कि बलराम भी हो, वो सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, या तो उनके विस्तार हैं, या उनके विस्तारों के विस्तार हैं, या विस्तारों के विस्तारों के विस्तार हैं। इसलिए श्री कृष्ण मूल भगवान होने के, राम होने के कारण उनको भी राम कहा जा सकता है और कहा जाता है। परंतु बलराम भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार है, सबसे पहले, फिर बलराम से विस्तार कौन होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, उनसे नारायण प्रकट होते हैं, फिर से चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर वो संकर्षण से, महासंकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं। और उधर आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में जितने भी और नारायण के स्वरूप हैं, वो ये सब नारायण और संकर्षण, प्रद्युम्न आदि इनके विस्तार होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी राम कहते हैं। किस दृष्टि से? दो बातें हैं, दो दृष्टि से। तो कौन समझाएंगे? अभी जो हमने चर्चा किया, भगवान कृष्ण को भी राम क्यों बोलते हैं, कौन बताएंगे? दो कारण अभी जो बताए थे।
राम धातु से राम, तो वो रमण करते हैं।
कौन रमण करते
हैं? भक्त लोग जो है कृष्ण का योगिनो मानते हैं, तो वो तो इसलिए वो राम धातु से सबको जो रमण देने वाला जो कृष्ण है, तो इसके लिए उनको राम बोला जाता है।
विशेष रूप से जो योगी जन हैं, क्योंकि वो भगवान में ही रमण करते हैं और किसी वस्तु में रमण नहीं करते, इसलिए वो भगवान को राम कहते हैं। और परम भगवान कौन है? आदि भगवान कौन है? कृष्ण। इसलिए राम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए करना ये भी उचित है। और दूसरा कारण क्या है?
रामादिमूर्तिषु जो भी अवतार प्रकट होते हैं वो मूल कृष्ण से ही प्रकट होते हैं।
तो जितने भी राम हैं, बलराम से लेकर परशुराम तक, वो सब अंततः भगवान से ही आते हैं, क्योंकि वो जितने भी राम हैं उन सब के उद्गम हैं, इसलिए वो मूल राम हैं। इस तरह से ये राम शब्द का तात्पर्य ऐसा है। तो बलराम को भी राम कहते हैं। तो ये पहली बात आज के बलराम कथा की चर्चा में, कि बलराम को राम कहते हैं, और भी बहुत सारे राम हैं, परंतु सबसे प्रमुख राम कृष्ण है। ठीक है। दूसरी बात, अब हमने ये कहा कि बलराम जी श्री कृष्ण के सर्वप्रथम विस्तार है, तो अंतर है बलराम और कृष्ण में कि कोई अंतर नहीं है?
अंतर बस रंग का है।
हाँ?
उनका
तो अंतर है कि नहीं है बलराम और कृष्ण में?
है भी नहीं भी।
ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो है, ये जगह जगह हमारे दर्शन में आता है। तो बलराम श्री कृष्ण से अभिन्न है। किस दृष्टि से अभिन्न है?
वो भी विष्णुमूर्ति,
वो भी भगवान ही हैं, वो भी कृष्ण ही हैं, केवल उनके विस्तार हैं बस। और भिन्नता किसमें है?
रंग
में। बलराम जी का रंग क्या है? सफेद रंग। और कृष्ण का? सांवला रंग। तो अंतर कृष्ण और बलराम में यही है, दोनों ही भगवान हैं, परंतु कृष्ण सांवले रंग के हैं, बलराम गोरे बहुत सफेद है। और कपड़े वस्त्र किस तरह के पहनते हैं? अब बलराम और कृष्ण में थोड़ा अंतर भी देखते हैं। नीलांबर नीले रंग की धोती पहनते हैं, कौन? बलराम। और कृष्ण? पीतांबर। तो पीतांबर और नीलांबर कपड़ों में भी है। और कृष्ण क्या लेते हैं अपने कर कमलों में? बांसुरी। और बलराम? हल। इसलिए गोकुल धाम में आएंगे, पधारे हैं कृष्ण बलराम, परंतु हम देख नहीं पा रहे हैं, परंतु एक दिन प्रकट होंगे विग्रह के रूप में भी, जब सही समय आएगा। तो उनका नाम क्या है? गोपाल हलधर। गोपाल कृष्ण हैं जो गाय की रक्षा करते हैं, और बलराम हलधर हैं जो खेती करते हैं। जो आप में से जो खेती करते हैं, आप बलराम के प्रतिनिधि हैं। आप में से जो गाय की सेवा करते हैं आप कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और आप में से जो दोनों की सेवा करते हैं आप दोनों के प्रतिनिधि हैं। और आप में से जो किसी की भी सेवा नहीं करते हैं उसका क्या? गौरता है। तो बलराम आप देखेंगे कंधे पे हल लेके चलते हैं, इसलिए उनका नाम हलधर। तो इसलिए जानबूझ के यहाँ कृष्ण बलराम जो प्रकट होंगे सही समय पे, उनका नाम रखा गया है हलधर, क्योंकि हमारे लिए गोकुल धाम में खेती कितनी महत्वपूर्ण है। तो बलराम जी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हल का प्रयोग भगवान ने, बलराम जी ने कब किया था किसी को याद है? खेती में तो करते हैं, और कब किया था? तो कुछ लीला बताओ क्यों ऐसे किया बलराम ने? क्या कौन बताएंगे?
बलराम जी रासलीला करना चाहते थे द्वितीय दिशा, उस वक्त यमुना थोड़ा सा ये हो गई है,
ये हो गई मतलब
अहंकार आ गया, अहंकार हो गया था।
नहीं स्पष्ट बोलो कैसे?
उनको रासलीला करने के लिए जो वातावरण था वो नहीं दे रहे,
जलक पीड़ा करने वाले,
तो उस वक्त बलराम जी क्रोधित हो गए और उनका पात्र बदल गया।
और कोई स्पष्टता से बताएंगे?
बलराम जी रासलीला करना चाहते थे द्वितीय दिशा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा
वारुण
किया हुआ था। तो जब उन्होंने जब बलराम जी ने यमुना को अपने पास बुलाया तो यमुना में स्नान करना चाहते थे, तो यमुना देवी ने सोचा कि अभी बलराम जी थोड़ा सा नशे में, इसलिए वो उनके पास आई है। तो फिर उस समय पे बलराम जी को गुस्सा आया और उन्होंने उनको ज़बरदस्ती अपने पास
कैसे
हल से खींचा, तब वो आई और फिर बलराम जी को क्षमा मांगा।
तो जब बलराम अपने गोपियों के साथ रासलीला करना चाहते थे, जो भगवान कृष्ण की गोपियां हैं वो अलग है, बलराम की गोपियां अलग है। तो बलराम जी जब अपनी रासलीला करना चाहते थे, वारुणी पेय का स्वाद उन्होंने लिया और फिर बहुत ही दिव्योन्माद में फिर वो रासलीला करने की तैयारी में थे, जल क्रीड़ा भी करना चाहते थे, यमुना में क्रीड़ा करना चाहते थे। तो यमुना हिचकिचाई, ये ऐसे कैसे मैं आऊँ? तो बलराम जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपना हल लिया और यमुना के पास से उनका हल ऐसे खींच लिया, तो उसमें से यमुना का जल, यमुना नदी जो है, ये छोटे 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 नदी अनेक होते गए। तब यमुना देवी डर गई और उनके सामने प्रकट हो गई हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने के लिए, फिर बलराम ने उनको क्षमा कर दिया। इस प्रकार से बलराम जी ने यमुना को थोड़ा सा दंड दिया। तो ये एक बार था जब बलराम ने अपने हल का प्रयोग खेती से अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए किया, और एक बार जो भागवतम में वर्णन है कि बलराम जी ने अपने हल का उपयोग किया
हस्तिनापुर को उखाड़ कर गंगा में फेंकना चाहते
थे। हाँ क्यों?
जब अनिरुद्ध शाम्ब ने लक्ष्मण को हरण करके लेकर जाते हैं।
लक्ष्मण कौन है?
दुर्योधन की,
दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मण को
सांब कृष्ण के पुत्र सांब ने स्वयंवर में उठाकर लेकर जा रहे थे। तब सब कौरवों ने मिलकर उनको सांब को पकड़कर रखते हैं,
गिरफ्तार कर लिया।
फिर बलराम जी स्वयं जाते हैं क्योंकि बलराम जी के
तो द्वारका में भी हलचल मच जाता है कि अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये हमारा सांब है। उधर कौरवों को गुस्सा आया, ये लड़का कैसे आया, यदु लोग समझते क्या है हमारे बारे में। और तो बलराम ने द्वारका में सबको शांत किया, रहने दो झगड़ा मत करो, अभी हमें अपने युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं जाके सब कुछ ठीक ठाक संभाल के आता हूँ। तो बलराम निकल पड़े द्वारका से और वो आए हस्तिनापुर में। इधर हस्तिनापुर में उनको क्या सुनना पड़ा? अपमानजनक शब्द सुनने पड़े। किस प्रकार के शब्द?
हमारे राजकुमारियों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनके औकात नहीं
है। हाँ, औकात नहीं, किस प्रकार से नहीं है?
हम बड़े राज्य है और ये तो साधारण वाले हैं।
दृष्टांत कौन सा दिया, उपमा कौन सी थी?
जूतों के पास रहना, वो सर पे आके बैठना चाहते
हैं। हाँ, जूतों के पास, जूतों को आके सर पे बैठना चाहिए कभी। दूसरे शब्द में क्या कह रहे थे? ये जो यदुवंशी है ये हमारे जूते बनने के लायक भी नहीं है, ये अभी हमारे सर पे आके बैठ गए किरीट के समान, मुकुट के समान। इस तरह से अपमानजनक शब्द बोलने लगे यदुओं के प्रति। और बलराम तो पहले शांति से सब कुछ सुलझाना चाहते थे, और जब बातचीत इस प्रकार से हो रही थी फिर बलराम जी को भी क्रोध आया, आंखें लाल लाल हो गए, कांपने लगे क्रोध के कारण। फिर बलराम जी अपना हल लिया और हस्तिनापुर में डाल दिया और सारे हस्तिनापुर को खींचने लगे। कहाँ की ओर? यमुना की ओर, ताकि हस्तिनापुर को खींच के यमुना में डुबा देना चाहते थे। तब सारे कौरवों के होश ठिकाने आ गए, तब सब हाथ जोड़ के आए सामने, अरे नहीं नहीं नहीं, कि बहुत बड़ी गलती हमारी हो गई। इस प्रकार से फिर बलराम ने क्षमा कर दिया उनको। और उधर सांब और लक्ष्मण, लक्ष्मणा 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 का विवाह हुआ, हुआ कैसे नहीं होता बलराम जी। सांब और लक्ष्मणा, सांब कौन थे? कृष्ण के पुत्र थे। उनका नाम सांब क्यों पड़ा?
अम्ब अम्ब शब्द से आता है सांब, अपनी माँ के पास बहुत ज्यादा है।
हाँ, क्योंकि ये बच्चा जो था अम्ब, अम्बा, अम्बा अर्थात माँ, स अम्ब मतलब माँ के साथ हमेशा वो रहना चाहता था बच्चा, तो माँ के बिना बिल्कुल नहीं रहता था। बाकी बच्चे इधर उधर खेलने भी जाते थे, वो अपने माँ के साथ ही रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सांब, स अम्ब, अम्बा आया स सांब। लेकिन आगे चल के जब वो तरुण बन गया, बहुत शूर वीर था वो, फिर उसने अकेले सारे कौरवों को हराया था और अब वो स्वयंवर में उठा ले गया लक्ष्मण को। दुर्योधन को भी बड़ा क्रोध आया था, परंतु बलराम जी दुर्योधन के ही गुरु हैं। किस चीज में गुरु हैं? गदा युद्ध में। तो बलराम जी ने इस प्रकार से अपने हल की लीला, खेती के अलावा, ऐसे दो प्रकार से किए। तो हल धर बलराम जी का एक नाम है, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आप अभी बलराम जयंती के दिन सुनेंगे। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हमारे लिए कृष्ण बलराम गोपाल हलधर बहुत महत्वपूर्ण है गोकुल धाम में खास करके। प्रभुपाद ने एक बार कहा क्योंकि वृंदावन मंदिर में भी कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक बुद्धि के लिए हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, आध्यात्मिक बल के लिए हमें बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यद्यपि गोपाल हलधर विग्रह के रूप में नहीं चित्र रूप में है, वही वृंदावन के कृष्ण बलराम विराजमान है ना यहाँ पे। तो एक दिन यहाँ पे हमारा मंदिर जब बनेगा अंदर, तो अंदर गोपाल हलधर भी प्रसन्न प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा।
जयंती शब्द जयंती क्यों उपयोग करते हैं?
जयंती जय जय जयकार। जयंती शब्द मतलब ये गुणगान का है, उनका जय जयकार है उनका। जब वो प्रकट हुए प्राकट्य दिवस को जयंती कहते हैं। परंतु जैसे भगवान और जैसे प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भगवान के अतिरिक्त ये जयंती शब्द का प्रयोग अन्यों से नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम भारत में भी देखते हैं गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती और ये जयंती वो जयंती, परंतु ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अभी भारत में कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से केवल भगवान के लिए ये होना चाहिए, बलराम जयंती, नरसिंह जयंती। और तिथि का जब नाम लेते हैं तो बलराम पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, और एक
डिफरेंस
रस का अंतर कैसे?
सेवक भगवान सेवक भगवान
दोनों भगवान है। बलराम जी सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। तो भगवान जब अपनी ही सेवा करना चाहते हैं तो बलराम का रूप ले लेते हैं, फिर अपनी सेवा कर लेते। काश हम लोग भी ऐसे कर सकते थे अपना विस्तार कर लो, अरे चलो पैर मालिश कर लो, दर्द हो रहा है। ऐसे नहीं होता है हमसे। लेकिन दोनों भगवान, सेवक भगवान सेव्य भगवान, परंतु रस में क्या है?
स्वामी और सेवक।
श्री कृष्ण कितने रसों में अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं?
पांच।
और बलराम? कृष्ण पांच रसों में, बलराम पांच। क्यों चार? पांचवा क्यों नहीं? कौन सा पांचवा नहीं है? माधुरी रस नहीं है? अभी हमने कहा ना उन्होंने रासलीला की, तो वो भी तो माधुरी रस का आस्वादन करते हैं। परंतु उनके लीलाओं में और कृष्ण में मिठास में थोड़ा अंतर ये है कि कृष्ण की लीलाएं सबसे मधुर, सबसे मधुर।
बलराम जो है नित्यानंद राम और चैतन्य महाप्रभु
जो है राधा और कृष्ण दोनों, तो इसके लिए बलराम को नित्यानंद राम हम ले सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को जब हम कृष्ण का अवतार ही जब मानते हैं तो उसमें राधा और कृष्ण का दोनों भाव आ जाते हैं,
क्योंकि जिस भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी का भाव है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही हैं, परंतु उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार किया है, बस इतना ही, इसलिए उनको राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहते हैं, क्योंकि राधा रानी का भाव है, परंतु चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है। राधा भाव द्विति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो वो कृष्ण स्वरूप है परंतु राधा भाव को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, तो अभी बलराम से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति दो कृपा करके, ताकि हम अच्छी तरह से हमारी साधना कर सकें, सेवा कर सकें, हमारी चेतना ठीक बनी रहे। बलराम जी बहुत कृपालु हैं, आदि गुरु हैं, इसलिए बलराम जी की कृपा पाने से कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा अपने आप आ जाती है, क्योंकि बलराम आदि गुरु होने के कारण हमें राधा कृष्ण वृंदावन आदि के रास्ते खोल देंगे। हरे कृष्णा, श्री श्री गोपाल हरधर की जय। गौर प्रेमानंदे, आपकी झूलन यात्रा उत्सव के बारे में देखकर, झूला वगैरह देखकर, दीप देखकर बहुत प्रसन्न खुश हो गया। सबको आनंद आता है ना झूलन यात्रा में? बाहर के भी भक्त लोग आते हैं कोई झूलन के लिए?
कल आए थे,
बहुत अच्छा, तो आज भी आएंगे, कल भी आएंगे,
वो गेस्ट थे, ऐसे ही आए थे, तो उनको बैठा।
हरि बोल, हरे कृष्णा। आज हवा बहुत ज़्यादा है, बेलगाम में भी बहुत हवा है आज, बारिश भी काफ़ी हुआ पिछले दिनों से। तबीयत का ख्याल सब लोग रख रहे हैं कि नहीं? अब अगला प्रश्न क्या पूछने वाला हूँ मैं? तेल लगा रहे हैं कि नहीं? कितने भक्त लोग तेल लगा रहे हैं? रोज लगाना, माता जी को लगाना चाहिए, सबको होना चाहिए, बच्चों को लिए भी करना चाहिए, जवान हो बूढ़े हो सबको करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी वातावरण ऐसे सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, बेलगाम में तो आधे लोग बीमार हैं। ये आप लोग इतने सेवा करते हो, परिश्रम करते हो, इसलिए आप सब हृष्ट पुष्ट रहते हो, फिर भी अपनी रक्षा के लिए तेल का मालिश करोगे तो ये हवा, ठंडी हवा ये वो, इससे थोड़ा सुरक्षित रहोगे। और प्रसाद गरम गरम लेना भी, ये समय प्रसाद देर से मत लेना, सही समय पे आके गरम गरम लोगे तो वात का शमन हो जाएगा, विकृत वात का शमन होके तबीयत ठीक रहेगा। और ये समय में खास करके प्राणायाम थोड़ा कर लेना आप सब, इस समय में वात बहुत विकृत हो जाता है शरीर में, तो प्राणायाम करने से भी वो वात का संतुलन हो जाता है। हम्म, इसलिए सब लोग ऐसे करिए कृपया, करेंगे ना। तबीयत सबका ठीक है ना, किसी का खराब नहीं है ना, हाँ? इसका खराब है मनोज का क्या हो गया, ताप खांसी? रात को सोते समय खास करके पैर के तलवों में तेल लगा के सोना। किसके पैर के तलवों में? हाँ ठीक है, शरीर में तेल लगाने से कुछ फर्क दिख रहा है आप सबको? कितने भक्तों को फर्क दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है?
ठंडी का महसूस भी,
ठंडी का कम महसूस होना, क्या फर्क पड़ रहा है? फ्रेश फ्रेश और फन लगा रहे हैं।
हाँ
शरीर का दर्द करना कम होता है,
क्रैम्प्स जो
पकड़ता है शरीर वो नहीं होता है। आप सब कृपया कीजिए। हाँ अंततः हर एक को अपना अपना ख्याल ही रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखिए, लेकिन अंततः हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। खास करके ऐसे हम वातावरण में रहते हैं तो हर एक को अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा हरि बोल। अभी बारिश के कारण अभी खेती में अच्छा है, अभी खेती का काम है, अभी कुछ आज नहीं।
मेंटेनेंस पानी ज्यादा हो तो कम करना, पानी कम है तो ज्यादा।
बाकी सेवाएं क्या चल रही हैं अभी बारिश में? ये किचन और अल्टर, ये दोनों तो बारिश हो गर्मी हो ये तो चलना ही चलना है, इसलिए किचन का गौशाला ये तो चलना ही चलना है। बाकी सेवाएं कभी नहीं भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन ये सेवाएं जो करते हैं भक्त लोग उनको विशेष थोड़ा धन्यवाद देना है। और जो फिर सही समय में खेती वगैरह करने जाते हैं बारिश में चिखल में, हाँ दिन भर हवा में ठंडी हवा में रहना परिश्रम करना, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर एक भक्त जहाँ भी हो जो भी सेवा कर रहे हो आप सब उत्साह से प्रेम से कीजिए और दिव्य आनंद को पाइए। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल।